गीता अध्याय 12 के श्लोकों का पाठ विस्तार करेंगे।
अव्यक्ता हि गते दुःखं देहवद्भिरवाप्यते क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते।
आप में से कोई दोहराएंगे? प्रभु जी में कोई बोलेंगे?
अव्यक्ता सत्यचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते।
अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहदारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ओम अज्ञानत निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सचि साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। भगवद्गीता के 12वें अध्याय तक हम लोग आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और ये अध्याय है भक्ति योग। अर्थात कृष्ण इस अध्याय में जो बतला रहे हैं वो वही है जो भगवद्गीता का उद्देश्य है, भगवान की भक्ति। और इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि कई लोग कहते हैं कि अव्यक्त में मन लगाना अच्छा है, भगवान के निराकार रूप में मन लगाना अच्छा है, और कई लोग कहते हैं कि साकार में, तो कौन सा श्रेष्ठ है। तो बड़ी विचित्र बात है कि इतना सारा सुनने पर भी अर्जुन कितना सुन चुके हैं, भगवान के विश्व रूप को देख चुके हैं, भगवान ने कहां कहां नहीं उसको बताया, मैया सक्त मनः पार्थ, हे पार्थ मुझ में मन लगाओ, हर जगह वो बता रहे हैं भक्ति करनी है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान की अर्चना करनी है, उन्हें अर्पण करना है। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात भगवान बतला रहे हैं हर जगह कि साकार रूप श्रेष्ठ है और साकार रूप की पूजा भक्ति हमें करनी है। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत में पूछ रहे हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो इसका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ है कि भगवान ने जो अब तक बतलाया वो अर्जुन ने सुना नहीं ठीक से, या जो भी अभी तक भगवान ने बतलाया इतने सारे अध्यायों में, क्या अर्जुन को उस पर विश्वास नहीं? जब भगवान कहते हैं मैं आसक्त मनः पार्थ, मुझ में मन आसक्त करो, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, नवे अध्याय में भगवान बताते हैं कि आपको मेरी अर्चना करनी है, मेरी पूजा करनी है, मुझे नमस्कार करना है, मेरा भक्त बनना है, जो कार्य करो मेरे लिए करो, यज्ञ करो तो मेरे लिए करो, सब कुछ मुझे अर्पण करो। इतना सब सुनने के बाद भी अर्जुन पूछ रहे हैं कि साकार अच्छा है या निराकार श्रेष्ठ। तो इसका कारण ये नहीं है कि अर्जुन के मन में अभी तक शंका है, या अर्जुन ठीक से समझ नहीं पाए हैं भगवान क्या कह रहे हैं, क्या भगवान अपने आप को कह रहे हैं या उनके अंदर बैठे किसी भगवान को कह रहे हैं या किसी एक शक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अर्जुन बड़ी अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान क्या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ये प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं ताकि भगवान भक्ति के विषय में बोल सकें। असली भक्ति क्या है अर्जुन सुनना चाहते हैं। अर्जुन को आनंद आता है भक्ति के विषय में सुनकर, और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि आगे आने वाले लोग बड़ी अच्छी तरह से इनका अंतर समझ लें कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, कौन सा सही है और क्या गलत है। इसलिए अर्जुन ये प्रश्न यहाँ पर करते हैं और भगवान उसका उत्तर देते हैं, और जैसे ही भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं कहीं तभी वो बता देते हैं कि जो लोग मेरे साकार रूप में अपना मन एकाग्र करते हैं, मेरी पूजा में लगे रहते हैं, वे परम सिद्ध हैं। अर्थात भगवान एक क्षण भी नहीं लेते हैं ये बतलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भगवान सोचते हैं कि क्या बताऊं, साकार बताऊं कि निराकार बताऊं, तुमको कौन सा अच्छा लगेगा, ये ठीक रहेगा कि नहीं। तुरंत बता देते हैं कि जो व्यक्ति साकार रूप का भजन करते हैं, साकार रूप में अपना मन लगाते हैं, वो परम सिद्ध हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं कि जो लोग अव्यक्त में अपना मन लगाते हैं, अर्थात ऐसे में जहाँ वो एक रूप को नहीं मानते हैं, कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निर्गुण निराकार हैं और निराकार ही परम सत्य है, तो ऐसे लोगों में, ऐसे लोग जब मन लगाते हैं निराकार में, तो उनके लिए क्या गति है या उनकी क्या स्थिति होती है, तो इसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जिनका चेत, जिनका हृदय अव्यक्त आसक्त, अव्यक्त में आसक्त है, ऐसे लोगों के लिए क्लेशो अधिकतर तेषाम, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं, तकलीफ होती है, क्लेश होते हैं आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, और उन लोगों के लिए उसमें प्रगति करना बड़ा कठिन होता है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्धे, जिन लोगों ने देह धारण किया है उन लोगों के लिए ये बड़ा कठिन है। क्या कारण है उन लोगों के लिए क्यों कठिन है? क्योंकि पहली बात, आत्मा के रूप में हर जीव जानता है कि भगवान का आकार है, भगवान निराकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जीव इस बात को नहीं जानता है। हर जीव, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, वो ये जानता है कि भगवान का रूप है, और भगवान जो परम सत्य कहलाते हैं वो एक साकार रूप में अपने धाम में विराजमान हैं। लेकिन इस बात को याद इसलिए नहीं कर पाता या समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि कई जन्मों से उसको भूला हुआ है, और कई जन्म जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ कई कई हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं, गिनती नहीं है कितने जन्म हम लोग ले चुके हैं। 84 लाख तो केवल योनियां हैं जिनमें हम घूमते हैं, लेकिन हर एक योनि में कितने जन्म लिए हैं और कितनी बार एक एक ब्रह्मांड में घूमे हैं, तो इसलिए हमारे जन्मों को गिन पाना ये कठिन है। असंभव है। तो इतने सारे जन्मों से हम भगवान को भूले हुए हैं, और तब हम लोग कैसे ये जान पाएंगे कि भगवान का क्या रूप है, भगवान का क्या है आकार है, क्योंकि भूल गए हैं भगवान को। लेकिन देखिए, भूलने के बाद भी इतने समय से भूल गए हैं कि अब हमें उनकी याद भी नहीं आती। कुछ दिन पहले एक भक्त हमसे पूछ रहे थे कि प्रभु जी, आपको आपके घर वालों की याद नहीं आती है, आपके घर वालों आपके साथ रहे, आप काफ़ी समय से बचपन से आप साथ में रहे, तो आपको अपने घर वालों की परिवार वालों की याद नहीं आती है। तो हमने कहा कि ये जो हमारा जीवन है ये बहुत थोड़ा है। जैसे अगर हम लोग देखें कि हम लोग कुछ 50-60 साल 70 साल जीते हैं, फिर और भी अन्य भी जन्म देख लें, पहले के भी सारे जन्म भी पकड़ लें, तो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत थोड़ा समय है, शाश्वतता की दृष्टि से। तो हमने उनसे कहा कि बहुत थोड़ा समय है, और इस थोड़े समय के लिए ही हम तो बहुत थोड़े समय अपने परिवार वालों के साथ रहे हैं। अर्थात आप सोचिए, करोड़ों 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 सालों में ये 15-20 साल का जो समय जो संग परिवार वालों के साथ किया, तो करोड़ों 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 सालों में ये 20 साल का क्या महत्व है? कुछ भी नहीं। तो इतने साल, करोड़ों साल हम लोग अलग रहे, ये 20 साल जिनके साथ रहे, हम आप कह रहे हैं कि हमें उनकी याद नहीं आती या हम लोग याद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस कृष्ण के साथ हम लोग करोड़ों 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 साल रह चुके हैं, उनको हम लोग भूल गए हैं, उनकी हमें याद नहीं आती, तो फिर ये 20 साल जिनके साथ रहे उनकी याद कैसे आएगी? अर्थात हम लोगों के हृदय इतने दूषित हो गए हैं, इतने व्यर्थ हो गए हैं इस भौतिक जगत में आकर, कि हम लोग उस कृष्ण को भूल गए हैं जिनके साथ हमने करोड़ों 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 साल बिताए हैं, जिनके साथ हम शाश्वत तौर से शाश्वत रूप से रहते हैं, जिनके साथ हम हर लीला करते हैं, जो हमें प्रेम करते हैं और जिन्हें हम प्रेम करते हैं, और वो असली प्रेम है। इस जीवन में तो लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, कोई दो लोग एक साथ आते हैं, पति पत्नी कहलाते हैं, थोड़े समय में पति की मृत्यु हो जाती है, फिर पत्नी की मृत्यु हो जाती है, वो कहीं जाते हैं, वो कहीं जाते हैं, जीवन समाप्त, संसार समाप्त। लेकिन कृष्ण, इनसे तो हम कब से प्रेम करते हैं और वे हमसे कब से प्रेम करते हैं, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं, और ये हमारे लिए समझना बहुत कठिन है। अभी भी इस समय भी हमें पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं उनके हृदय में कभी ये नहीं आएगा कि हम कृष्ण को भूले हुए हैं, क्योंकि काफी समय हो गया। लेकिन आप सोचिए, जिन कृष्ण के साथ करोड़ों करोड़ों साल बिताए हैं, जिन कृष्ण ने हमें पूरा प्रेम दिया है, असली प्रेम दिया है, जो आज भी प्रेम करते हैं, हम उनको भूल गए। तो इसीलिए, इसी कारण से लोग अलग अलग बातें बनाते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, उनको याद करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग कृष्ण को निराकार कहते हैं, तो ये मानना चाहिए कि वे भी तो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, वे भी तो भूले हुए हैं कृष्ण को, इसीलिए कृष्ण को पाने का, कृष्ण को समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। इसीलिए वो सोचते हैं पता नहीं कृष्ण का आकार है या नहीं है। लेकिन इन सब से एक बात पता चलती है कि हर एक के हृदय में कृष्ण का विरह है, चाहे वो मायावादी हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो भक्त हो, ज्ञानी हो या योगी हो, हर व्यक्ति कृष्ण को ढूंढ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति कृष्ण से अलग है। तो इसलिए अगर हम लोगों को ये सोचना है कि हमारी अगर कोई जिम्मेदारी है, हम अगर किसी को भूले हैं, अपने परिवार को भूल गए हैं, बड़ा गलत किया है, तो साथ ही साथ ये भी सोचना चाहिए कि कृष्ण को भूलकर कितनी बड़ी गलती की है। जो हमारे असली पिता हैं, जो हमारे असली परिवार है, इस संसार में कई बार देखा जाता है कि अगर कोई प्रेमी प्रेमिका कोई अलग हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है उन्हें, कभी कभी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई ऐसी घटनाएं हमने सुनी हैं। कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने घटना सुनी कि एक युवती ने अपने गले में रस्सी डालकर आत्महत्या कर ली। कारण था कि घर वाले कुछ विरोध कर रहे थे उनके किसी संबंध का, किसी पुरुष के साथ उनका जो था। तो व्यक्ति इतनी हद तक जा सकता है कि आत्महत्या कर लेता है विरह में, लेकिन कृष्ण के विरह में कोई कभी नहीं सोचता कि मुझे आत्महत्या करनी चाहिए। सोचा है कभी आप लोगों ने, कृष्ण का विरह है चलो आत्महत्या कर ले? चैतन्य महाप्रभु ने सोचा था। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे कृष्ण से कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर कृष्ण से प्रेम होता तो मेरे प्राण मेरे अंदर नहीं रहते, मेरे प्राण मेरे शरीर में हैं, इसका अर्थ है मुझे कृष्ण से कोई प्रेम नहीं है। ये प्रेम है कृष्ण प्रेम, तो हम लोग कभी नहीं सोचते। हमने तो कभी कोई ऐसा आदमी नहीं सुना भौतिक जगत में भक्तों को छोड़कर कि जो कहता हो कि मुझे कृष्ण से बड़ा प्रेम है, मुझे कृष्ण के पास जाना है और कृष्ण के विरह में मैं आत्महत्या कर रहा हूं। लेकिन इन भौतिक चीजों के लिए, भौतिक लोगों के लिए, भौतिक आसक्ति के लिए हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने आप तक की हत्या करने के लिए, अर्थात अपने शरीर को भी त्यागने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यही भावना कृष्ण के लिए नहीं आती। इसीलिए कृष्ण के रूप को अलग अलग आकार देते हैं और ये निराकार निर्गुण ऐसा मानते हैं। ये निराकारवादी क्या है, ये मायावादी क्या है, ये भी भक्त हैं, ये भी कृष्ण को पाना चाहते हैं लेकिन एक दूसरे रूप में। इनकी शुरुआत हुई थी आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व, जब श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जन्म लिया इस पृथ्वी पर। वो आए और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, चारों कोनों में गए, हर तरफ गए, कई शिष्य बनाए, अद्वैतवाद का प्रचार किया शंकराचार्य ने कि हम और भगवान अलग नहीं हैं, भगवान भी हम ही भगवान हैं। मायावाद का प्रचार हुआ, भगवान भी माया का ही रूप हैं। तो ऐसा बड़ा प्रचार किया उन्होंने और हर जगह पर उनके शिष्य हुए, उन्होंने संन्यास किया कई लोगों को, खुद भी सन्यासी रहे, बड़ा प्रचार किया और कई भाष्य लिखे भगवद गीता पर, वेदांत सूत्रों पर, ऐसे कई भाष्य लिखे उन्होंने जिसमें ये बतलाया कि भगवान का रूप नहीं है। लेकिन फिर भी वही शंकराचार्य, भले ही उन्होंने इतना मायावाद का प्रचार किया, एक समय काशी में से जा रहे थे तो काशी में जाते जाते उन्होंने सुना कि उनके एक कोई शिष्य थे, वो बहुत व्याकरण का पढ़ाई वहां पर कर रहे थे, उनके अंत समय की बात है जब वो अपना देह त्यागने ही वाले थे। तो उन्होंने देखा कि ये बहुत, ये जो भक्त हैं ये बहुत ज्यादा ग्रामर में, व्याकरण में लगा है कि किस तरह से व्याकरण के द्वारा हम शास्त्रों को प्रस्तुत करें। शास्त्रों में ढूंढ रहा था कि क्या महत्वपूर्ण चीज है, उसको निकाल कर उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत करें, शब्दों को घुमा फिरा कर प्रस्तुत करें। तो शंकराचार्य जी ने उसको देखा और शंकराचार्य जी, वो शंकराचार्य जी जो मायावाद का प्रचार करते हैं, भगवान के रूप को नकार देते हैं, अपना जीवन समाप्त करने से पहले अपने इस शिष्य को कहते हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। वो कहते हैं कि हे मूर्ख, गोविंद का नाम लो। संप्रांते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति। वो कहते हैं कि जब मृत्यु आएगी तब ये तुम्हारा व्याकरण कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारे ये शब्दों का हेर फेर कोई काम नहीं आएगा, केवल एक ही चीज काम आएगी, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो क्या लाभ है जीवन भर तुम इतने सारे व्याकरण, वही शंकराचार्य जिन्होंने सिखलाया था, लेकिन कहते हैं अंत में। तो उन्होंने काफी रचनाएं की, लेकिन उनकी प्रमुख योगदान भक्ति के प्रति रहा है उनके ऐसे स्तोत्र भज गोविंदम, जिसमें बतलाते हैं कि व्यक्ति का अंतिम ध्येय है भगवान का नाम लेना। और न केवल इतना, उन्होंने उसमें 12 श्लोक लिखे दरअसल इस भजन में अभी इस समय बहुत ज़्यादा श्लोक है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मूलतः उन्होंने केवल 12 श्लोक लिखे थे और उसके बाद उस समय उनके साथ में 14 उनके शिष्य थे, तो उन 14 शिष्यों ने एक एक श्लोक और लिखा था, तो ऐसे वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन 12 श्लोक लिखे, उन 12 श्लोकों में भक्ति के विषय में बतलाया, सत्संग के विषय में बतलाया। वो कहते हैं सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। क्या करते हैं वो बताते हैं। बाला साव क्रीड़ा सत तरुण साव तरुणी सत वृद्ध साव चिंता सत। वो कह रहे हैं जीवन की अलग अलग स्थितियों को बतला रहे हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को कैसे भूल जाता है, कैसे बर्बाद कर देता है, कैसे खो देता है। वो कहते हैं बालक तावत क्रीड़ा सकता, बाल्यपन में खेल खेल में ही जीवन को खो देता है, जीवन चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि कम से कम 15-20 साल का जब तक नहीं होता, 15 साल तो कम से कम अब हो गया है, व्यक्ति खेलता ही रहता है। परिवार वाले कहते हैं अभी तो आपके खाने खेलने की उम्र है, अभी ये मत करो वो मत करो खाओ खेलो, 10-12 साल खेलता रहता है। तो बाला सावध क्रीड़ा सकता, अपने जीवन को खो देता है केवल खेल खेलने। इसीलिए प्रहलाद महाराज समझाते हैं कौमा और आसुरत शास्त्री, तब से करनी चाहिए भक्ति, छोटा सा बालक हो तब से अपने जीवन को खोना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में रोना पड़ता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देखकर रोया, रोना पड़ता है। तो कहते हैं कि बाला सावत क्रीड़ा सकता तरुण सावत तरुणी सकता, और जब युवक हो जाता है तो अपना जीवन खो देता है एक युवती के पीछे, क्योंकि तरुण अवस्था में तरुणी बड़ी आकर्षक लगती है, उनको लगता है कि यही हमारा जीवन है, अगर मेरा विवाह इससे नहीं हुआ तो मेरा जीवन बर्बाद है, मैं आत्महत्या कर देता हूँ, जीने का क्या लाभ है। तरुणा तावत तरुणी सकता, सोचते हैं कि नहीं अगर हमें ये नहीं मिले या हमारा विवाह नहीं हुआ तो फिर हमारा जीवन, ये होता है शुरुआत में, बाद में आगे चलकर पता चलता है कि जीवन क्या है, लेकिन उस अवस्था में लगता है कि बस यही जीवन है, अगर हमारा विवाह हो गया तो बस संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। फिर विवाह भी हो जाता है और आगे क्या क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो तरुणा साव तरुणी सत्य, जीवन खो जाता है इसी में, जो जीवन जो समय उस समय का विशेष करके तरुणावस्था जो भगवान की भक्ति के लिए बनी है, केवल तरुणावस्था ही ऐसी अवस्था है जहाँ बहुत अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बाल्यावस्था में इतनी अच्छी से नहीं हो सकता है क्योंकि ज्ञान नहीं होता है, वृद्धावस्था में कर नहीं सकते हैं क्योंकि ज्ञान भी हो तो भी शरीर साथ नहीं देता, इंद्रियां साथ नहीं देती, लेकिन तरुणावस्था में सबसे अच्छी अवस्था है भक्ति करने के लिए। लेकिन उस समय हम खो देते हैं इस अवस्था को एक तरुणी के पीछे, अर्थात तरुण तरुणी के पीछे और तरुणी तरुणी के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और फिर वृद्धा का वृद्धा सावत चिंता सकता, जब वृद्धावस्था में आते हैं तो सारे जीवन जो पाप कार्य किए हैं उनको सोच सोच के चिंता में अपना जीवन खो देते हैं। चिंता सकता, उस समय चिंता होती है, क्यों चिंता होती है, क्योंकि पता है जीवन भर कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, किस व्यक्ति को वृद्धावस्था में चिंता होगी, जिसने पाप किया, जिसने भक्ति नहीं की, जो जानता है कि मेरा अंत बहुत बुरा होने वाला है, ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंता में रहेगा। या ऐसा व्यक्ति जिसे कोई ज्ञान नहीं है अपने विषय में, भगवान के विषय में, इस जीवन के विषय में, कर्म के विषय में, ऐसा व्यक्ति वो कठिनाई में रहेगा। इसीलिए जब हम लोग भगवद गीता पर विशेष कोर्स करते हैं 7 दिन का, तो उसमें जब विषय लेते हैं तो जब लोग सुनते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा होता है, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को। अभी हॉस्टल में हमने किया था तभी वहाँ पर लोग बाद में बतला रहे थे, जब कोर्स पूरा हो गया तो हम लोगों से पूछ रहे थे कि कैसा लगा आपको, क्योंकि वहाँ बहुत नए लोग हैं, उन लोगों को भक्ति के विषय में कुछ नहीं पता, लेकिन सब बड़े प्रसन्न थे और कह रहे थे हमने पहली बार ऐसा सुना है कि ऐसा भी होता है, ये भी होता है। हम लोग रोज सुनते हैं इसलिए हम लोग आदि हो गए हैं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो लोगों को पता चलता क्योंकि जीवन भर किया ही नहीं, तो इसीलिए चिंता रहती है और चिंता हमें चिता की ओर ले जाती है। चिंता में से केवल एक वो डॉट निकाल लिया जाता है तो चिता बन जाती है। तो वृद्धा साव चिंता सकता, फिर वो बताते हैं कि ये सब तो ठीक है, लोग इसमें भूल जाते हैं, लेकिन कोई भी आसक्त नहीं है पर ब्रह्म के प्रति। बच्चा खेल में आ सकता है, तरुण तरुणी में आ सकता है, वृद्ध चिंता में आ सकता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण में आ सकता है, पर ब्रह्म में आ सकता है। जो अपने आप को भूल जाना चाहता है, अपने इस भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देना चाहता है। तो इसीलिए ये बड़ा कठिन है हम लोगों के लिए कि हम भगवान को समझ पाए। इतनी सारी आसक्तियां हैं, और जो ऐसे लोग होते हैं जो अव्यक्त में अपना मन लगाना चाहते हैं, भगवान बताते हैं उनके लिए बड़ा कष्टप्रद है, क्लेशोधिक है। क्यों कष्टदायक, क्या कठिनाई है? भगवान के अगर हम अव्यक्त में ध्यान करें तो उसमें क्या कठिनाई है? क्यों भगवान कह रहे हैं बहुत कठिन है? तो आइए हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, एक प्रयोग करके देखते हैं। अभी एक मिनट के लिए आप लोग सब आंखें बंद कीजिएगा, और सब कीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं हम नहीं करेंगे, बाकी लोग तो कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब लोग एक मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और अपना ध्यान किसी पर भी मत लगाइए, प्रयास कीजिए निराकार पर, यानी कुछ भी नहीं, शून्य, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ध्यान लगाइए कि आप अपना ध्यान लगा रहे हैं किसी पे भी नहीं, कोई रूप पे नहीं, कोई चीज पे नहीं, कोई चीज का स्मरण नहीं होना चाहिए। प्रयास कीजिए एक मिनट तक, जैसे आप आंखें बंद कीजिए और किसी ऐसी चीज, किसी भी चीज पर ध्यान मत लगाइएगा। ठीक है, ज्यादा समय आपको तकलीफ नहीं देंगे। अब और एक बार आपको आंखें बंद करनी है और ध्यान लगाना है भगवान के स्वरूप पर, कृष्ण पर। कृष्ण की मुरली कैसी है, कृष्ण का मुखारविंद कैसा है, कृष्ण के मस्तक पर लगने वाला मोर पंख कैसा है। तो अब आप आधे मिनट के लिए कृष्ण के रूप पर ध्यान दीजिए, आंखें बंद करके जैसे पहले किया था। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अभी आप लोग बतलाइए कि इन दोनों ध्यानों में आपको कौन सा अच्छा लगा? पहला वाला कितने लोगों को अच्छा लगा? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, पहला हमने बताया था कुछ किसी पर ध्यान नहीं करना चाहिए। हाँ जी, अच्छा पहले वाले के बारे में चर्चा करेंगे। जब पहले हम लोग ध्यान कर रहे थे किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं करना है, तो आपको क्या क्या ध्यान आ रहा था? दो तीन लोग यहाँ से और दो तीन लोग वहाँ से बताएंगे आपको क्या। हाँ आप बताइए। अलग अलग विचार आ रहा था, कोई रूप दिखाई दे रहा था कि कुछ नहीं दिख रहा था, या कुछ ध्यान कहाँ पर जा रहा था? मन इधर उधर भाग रहा था, ध्यान नहीं लग रहा था। और कोई कैसे? अच्छा, और कोई? माता जी ने उस समय तो लेक्चर हो ही नहीं रहा था। अच्छा, और कोई? हाँ बस। हाँ, और कोई? किसी को शून्य, एक लाइट, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया? नहीं, आप लोग अच्छे बात नहीं है ना, आपको लाइट दिखाई देना चाहिए था, कुछ नहीं दिखना था। अच्छा, दूसरे बारे में, जब दूसरी बार ध्यान किया तब कैसा लगा आपको? कैसा लगा? फिर अच्छा लगा, ध्यान लगा उसका? और कोई किसी ने ध्यान किया कि नहीं? प्रभु जी हमें, माता जी हमें दूसरी बार कैसा लगा? दूसरी बार अच्छा, ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ? तो देखिए, हमने इसलिए बतलाया करने के लिए कि जो भगवान कह रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए कि निराकार पर ध्यान लगाना ये क्लेशोधिकतर रखते हैं, बहुत कठिन है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई जन्मों से हमने केवल रूप देखा है, हमने निराकार देखा ही नहीं, भगवान की ब्रह्म ज्योति को देखा ही नहीं, तो कैसे हम किसी बिना रूप के चीज पर ध्यान लगाएंगे? ध्यान कहीं ना कहीं जाएगा ही, आप कुछ भी कर लीजिए, आप सोचे मैं बैठ जाऊंगा एकदम अपने मन को शून्य कर दूंगा, कोई विचार नहीं आएगा मन में, कोई इच्छा नहीं रहेगी मन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। इच्छाएं मन में हमेशा रहती हैं, केवल मृत व्यक्ति होता है जिसके मन में इच्छाएं नहीं होती, जब मर जाता है व्यक्ति तो उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, लेकिन जब तक जीवित है इच्छाएं रहती हैं। ऐसा कभी समय नहीं आता कि जब हमारी कोई इच्छा नहीं रहती, इच्छा ही नहीं है। तो इसीलिए इच्छाएं हैं, हम इसको शून्य नहीं कर सकते, इसलिए जब हम ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जैसे भगवान यहाँ बता रहे क्लेशो दिकतरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसा, जो अपने चित्त को अपने मन को अव्यक्त में लगाने का प्रयास करते हैं उनके लिए बहुत कठिन है, उनके लिए प्रगति भी नहीं है, क्योंकि ध्यान ही नहीं कर सकते, किसी न किसी चीज पर तो ध्यान करेंगे। और जब भगवान के रूप पर ध्यान करते हैं तो हृदय में आनंद भी आता है, और बड़ी सरल है भक्ति की विधि, बड़ी सरल है भगवान पर ध्यान करना, बड़ा सरल है। आप बंद कीजिए और देखिए, भगवान ने मोर पंख पहना है, भगवान ने कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं, भगवान ने मुरली पकड़ी है, हाथ में पकड़ी है कि यहाँ लगाई हुई है, किसके साथ खड़े हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए, लेकिन अव्यक्त में क्या सोचेंगे? कुछ है ही नहीं, ध्यान करना है किस पर? जीरो, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बड़ा कठिन है ध्यान करना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि उन लोगों के लिए केवल ध्यान करना कठिन नहीं है, उनके लिए प्रगति कर पाना भी कठिन है, कर नहीं पाते हैं प्रगति, क्योंकि भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। भगवान के रूप को ध्यान कीजिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवान को कुछ अर्पण कीजिए, आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इससे सरल विधि और क्या हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रहते हुए केवल भगवान को भोग अर्पण करता है और उस भोग को अर्पण करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वो इन मायावादियों से ज़्यादा प्रगति कर सकता है, वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। और सरल विधि क्या चाहिए? भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, ये तो कोई भी कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो भक्ति को कितना सरल है वो बतला रहे हैं, कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो बड़ा सरल है। और ये सरल क्यों है? क्योंकि आत्मा ये सदैव भक्ति करती है, हमारे लिए स्वाभाविक है। तो जो स्वाभाविक चीज़ें होती हैं वो बड़ी सरल होती हैं। जैसे आप मछली को बोलिए कि आपको पानी में तैरना है, तो मछली के लिए पानी में तैरना स्वाभाविक है, बड़ी जल्दी तैर लेगी। समझिए, किसी मछली को आपने बाहर निकाल कर रखा है अपने स्वाभाविक स्थान से, नेचुरल स्थान से, प्राकृतिक स्थान जो उसका जल है उससे बाहर निकाल दिया आपने मछली को, और उसको बोलिए कि हम आपको एसी रूम देंगे, आपको मर्सिडीज बेंच कार देंगे, आपको हम रेबन के गॉगल्स ला देंगे या मोबाइल दे देंगे, 5-star होटल में बिठाएंगे, अच्छा अच्छा भोजन कराएंगे, तो क्या मछली खुश होगी? मछली खुश नहीं होगी। तो आप उसको कुछ भी दे दीजिए, उसको बोलिए आप हवा में उड़ने का प्रयास कीजिए, तो उड़ पाएगी क्या? नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं। बस वो मछली को केवल पानी में डाल दीजिए, आपका ये सारा ये एसी रूम, एसी गाड़ी, ये बंगला बंगला कुछ उसके काम का नहीं है, केवल उसको पानी में डाल दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएगी और बड़ी सरलता से वो तैरने लगेगी, उसको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह आत्मा को केवल भगवान की भक्ति में लगा दीजिए, भगवान की भक्ति पानी के समान है, आत्मा मछली के समान है, तो इस मछली रूपी आत्मा को केवल भक्ति रूपी पानी में डाल दीजिए, आत्मा बड़ी प्रसन्न रहेगी और उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के लिए या मछली के लिए तैरना ये स्वाभाविक है, उसको सिखाना नहीं पड़ता, उसको स्विमिंग पूल में जाकर कोच नहीं होते हैं वहां पर कि लेकर जाते हैं और सिखाते हैं कि देखो अपने पंख ऐसे हिलाओ, अपना ये ऐसे करो, यहाँ से घूमो। मनुष्य को सिखाना पड़ता है। बच्चा छोटा होता है, स्विमिंग पूल में जाता है, सीखता है कैसे स्विमिंग करनी है, पाँव कैसे चलाना है, हाथ कैसे चलाना है। मछली को नहीं सिखाना पड़ता। इसी तरह आत्मा को सिखाना नहीं पड़ता है कि भक्ति कैसे करनी है, केवल उसको जल में डालना होता है, अर्थात उस भक्ति के वातावरण में लाना होता है और बड़ी सरलता से वो भक्ति करने लगता है। हम सब लोगों को यह अनुभव है। हम लोगों को किसने सिखाया थोड़ी कि भक्ति करने के लिए ये चाहिए ये चाहिए, केवल बतलाया, उसमें डाल दिया, अब हम लोग बड़ी सरलता से कर सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति बड़ी सरल है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है और इस कारण से आत्मा भक्ति कर पाता है। दूसरा, वैसे भी हम लोग देखते हैं कि कितनी सरल सरल विधियां भगवान ने दी हैं। केवल भगवान की लीलाओं को श्रवण करें, भगवान के रूप का स्मरण करें, और ये जो अव्यक्तवादी हैं, ये जो मायावादी हैं, ये तो वृंदावन के उन पेड़ों से भी गिरे हुए हैं जो पेड़ भी ये जानते हैं कि भगवान का रूप है। पेड़ तो वैसे बहुत निम्न श्रेणी के हैं, वो तो एकदम नीचे की श्रेणी मानी जाती है, लेकिन वृंदावन के पेड़ भी भगवान के आने का इंतजार करते हैं। कल का दिवस गोप अष्टमी कहलाता है। गोप अष्टमी यानी कल के दिवस पर भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत अच्छा उत्सव है। वृंदावन में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है ये उत्सव, गोपाष्टमी का उत्सव। तो उस समय भगवान का इंतजार सारे पेड़ कर रहे थे, क्योंकि भगवान को देखना चाहते थे। ये भगवान का रूप है, भगवान का सौंदर्य है। जब गोपाष्टमी का दिवस आया, उसके पहले भगवान बड़े छोटे थे। भगवान की लीलाएं चार भागों में विभाजित होती हैं, प्रमुखतः तीन भाग तक जाते हैं भगवान। जैसे शुरुआत की अवस्था होती है 5 वर्ष तक, उसके बाद फिर पौगंड अवस्था आती है, फिर कैशोर अवस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है। तो भगवान अभी छोटे थे तो बछड़ों को चराया करते थे, और धीरे धीरे जैसे 4-5 साल के थे भगवान तो बछड़ों को चराते थे। तो बछड़े तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो गायें बन जाते हैं 1-2-3 साल में ही। हम लोग देखते हैं गोकुल धाम में, कभी कभी जाते हैं तो जैसे कोई नया बछड़ा हुआ है तो हम लोग देखते हैं, फिर 1-1.5 महीने बाद जाते तो हमको पूछना पड़ता है वो बछड़ा कहाँ गया, वो सामने ही खड़ा होता है, इतना बड़ा हो जाता है, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो सब गायें हो गई। तो एक समय ऐसा आया कि ये जो बछड़े थे, साधारणतः ऐसा होता है कि बछड़ों को गायों के साथ छोड़ा नहीं जाता। गायें दूर जंगल में चरने जाती थी, उनको गोप ले जाया करते थे, और बछड़ों को छोटे बालक ले जाते थे और वो पास में ही ले जाते, अंदर जंगल में ज़्यादा नहीं जाते थे, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और बछड़े भी छोटे हैं, तो इसलिए उन्हें जंगल में नहीं ले जाया जाता था, तो पास में ही चरते थे। दूसरा कारण ये भी था कि अगर बछड़ों को गायों के साथ छोड़ दें तो दिन भर वो दूध ही पीते रहते हैं और सारा दूध पी जाते हैं, और माँ गाय जो होती है वो बहुत वात्सल्य से भरी होती है, बहुत स्नेही होती है गाय, वो अपना दूध पिला देती है, कभी मना नहीं करती। हम लोग देख रहे थे एक बार, अभी ऐसा होता है वहाँ पर कि सुबह सुबह हम लोग जब जाते देखते हैं, करीब 8-8:30-9 बजे गायें चली जाती हैं चरने के लिए, फिर वो लोग शाम को आते हैं 5 बजे करीब, पूरा दिन चरते रहती हैं। गोकुल धाम बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा विशाल जगह है, उनको आराम से चरने के लिए बहुत जगह है। तो अभी बछड़ों को भी साथ में छोड़ देते हैं। तो हम देख रहे थे, एक दिन गए थे वहाँ पर जहाँ गायें जाती हैं, तो दिन में तो बछड़ों को जब मौका मिलता है बस देखते हैं, सीधा दूध पीने लग जाते हैं। उनको बस एक ही काम है, जैसे ही गाय खड़ी होती है कहीं पर, चलती रहती है तो भी प्रयास करते रहते, अपना मुंह मारते रहते हैं, लेकिन जैसे ही गाय कहीं खड़ी हो जाती है तुरंत बस दूध पीने लग जाते हैं, दिन भर दूध पीते रहते हैं और बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। लेकिन उस समय ज़्यादा दूध बछड़ों के लिए ठीक भी नहीं है, तो उस समय बछड़ों को अलग चरने के लिए भेजा जाता था। तो कृष्ण अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ बछड़ों को चराने जाते थे। तो अब एक समय ऐसा आया कि बछड़े भी बड़े हो गए, अब वो बछड़ों के साथ जाने योग्य नहीं रहे, उन्हें गायों के साथ भेजना था। और यहाँ बालक भी बड़े हो गए थे, तो बाकी अन्य बालक अब गायों को चराने जाने वाले थे। तो उस समय यशोदा माता से कृष्ण ने कहा कि माँ, मेरे अंदर अब बहुत शक्ति आ गई है, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे गाय चराने के लिए जंगल में जाने दो। यशोदा माता ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर अभी कहाँ शक्ति है, अभी छोटे से बालक हो, छोटे से बच्चे हो तुम जंगल में जाओगे, जंगल तो बड़ा भयानक होता है, और ऐसे बड़ी बड़ी गायों को संभालना, और फिर कोई जानवर आ जाएगा, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कृष्ण बड़ा प्रयास करते माँ को समझाने का कि नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब शक्ति आ गई है, लेकिन यशोदा माता नहीं मानती थी। तो बाकी लड़के तो तैयार थे और गायों के बछड़े भी तैयार थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो बछड़े जिनको कृष्ण ने चराया था, अब जब उन्हें गायों के साथ भेजने लगे तो वो जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। बड़े बल से उन्हें खींचा जा रहा था कि चलो चलो चलो, लेकिन वो जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि जिन्हें कृष्ण ने चराया हो, जो कृष्ण के साथ रहे हों, वो कैसे कृष्ण को छोड़कर जा सकते हैं। कृष्ण का एक भक्त जो केवल कृष्ण का नाम लेता है, वो कृष्ण को नहीं छोड़ सकता, तो फिर ऐसे बछड़े जो कृष्ण के साथ घूमे हैं, वो कैसे छोड़ सकते थे। तो सब बछड़ों ने जाने से इनकार कर दिया, खींच रहे थे सारे गोप ने, लेके जाओ लेके जाओ, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं। और साथ ही साथ गायों ने भी जाने से इनकार कर दिया जो पहले जाती थी, क्योंकि अब वो भी कह रही थी कि अब कृष्ण हमारे साथ आने चाहिए, अभी तक छोटे थे ठीक है, अब उन्हें आना चाहिए। फिर जो बच्चे थे जो बड़े हो गए थे, उनसे कहा गया कि ठीक है अब आप गायों को लेके जाओ, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक कृष्ण नहीं आएंगे हम लोग भी नहीं जाएंगे, हम लोग तो जाते ही हैं गायें बछड़े चराने के लिए कि कृष्ण साथ में आते हैं, नहीं तो हमारे जाने का क्या लाभ है। तो सारा हंगामा हो गया पूरे ब्रज में, गायें नहीं जा रही हैं, बछड़े नहीं जा रहे हैं, ग्वाल बाल नहीं जा रहे हैं, सब वहीं रुक गया है क्योंकि कृष्ण नहीं जा रहे। तो फिर सब लोग आए नंद महाराज के पास और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए आप कृष्ण को जाने दीजिए। तो नंद महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो बहुत छोटा है, उसकी सुरक्षा कौन करेंगे। तो सब ने उनको गारंटी दी, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम कृष्ण को लेकर जाएंगे, ज़्यादा समय तो गोद में ही रखेंगे, उसको नीचे नहीं घूमने देंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा ऐसे अगर उसको अच्छा लगा तो घूम सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो बछड़े नहीं जा रहे हैं, गाय नहीं जा रही हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं, और गाय अगर चरने नहीं जाएंगी तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, दूध नहीं मिलेगा। तो नंद महाराज तो तैयार हो गए कि ठीक है, सब लोगों ने गारंटी दी कि हम लोग उनकी हम रक्षा करेंगे, लेकिन यशोदा माता तैयार नहीं, क्योंकि यशोदा के लिए तो वो छोटा सा बालक था, और जाएगा जंगल में जाएगा, कांटे लगेंगे पाँव में, कैसे वो घूमेगा। तो यशोदा बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो बहुत जब नंद महाराज ने मनाया तो उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त पे जाने दूंगी कि इसके लिए बहुत अच्छे से जूते बनवा कर लाओ, ताकि जब जंगल में जाए तो इसके पाँव में कांटे नहीं लगे, क्योंकि बहुत कोमल भगवान के चरण होते हैं। भगवान के चरणों का वर्णन एक स्थान पर किया है, भगवान श्री राम के चरणों का वर्णन और श्रीमती सीता देवी के चरणों का वर्णन, वो बतलाते हैं कि इन कथाओं को सुनाकर हिरण्यकश्यप ने अपने भतीजों तथा अन्य संबंधियों को सांत्वना प्रदान की और उन्हें शोक से मुक्त किया। इस तरह शांत होने पर हिरण्यकश्यप की माता दिति तथा अनुज वधू ऋषभानु ने अपने मन आध्यात्मिक विचारों में लगा दिए। श्लोक नंबर एक। श्री नारद उवाच, भ्रातरी एवं विनिहते हरिना क्रीडमूर्तिना हिरण्यकशिपुः राजन పర్యతప్త రుషా శుచ. శ్రీనారద ఉవాచ, భ్రాతయేవం వినిహతే హరినా క్రోడమూర్తినా హిరణ్యకశిపురాజన్ పర్యతప్త దృశా శుచ. భ్రాతయే, శ్రీనారద్ ముని నే కహా, భ్రాతరి జబ్ ఉస్కా భాయి హిరణ్యాక్ష ఏవం ఇస్ ప్రకార్ వినిహతే మార్ డాలా గయా హరినా హరి ద్వారా క్రోడ మూర్తినా వరాహ కే రూప్ మే హిరణ్యకశిపుని రాజన్ హే రాజా పర్యతప్యత్ పీడిత్ రుష క్రోధ్ సే శుచ శోక్ సే. అనువాద తాత్పర్య శ్రీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీ ప్రభుపాద్ కే ద్వారా. శ్రీ నారద్ ముని నే కహా, హే రాజా యుధిష్ఠిర్, జబ్ భగవాన్ విష్ణు నే వరాహ రూప్ ధారణ కర్కే హిరణ్యాక్ష కో మార్ డాలా తో హిరణ్యాక్ష కా భాయి హిరణ్యకశిపు అత్యధిక క్రుధ్ హువా ఔర్ విలాప్ కర్నే లగా. తాత్పర్య, యుధిష్ఠిర్ నే నారద్ ముని సే పూచా థా కి హిరణ్యకశిపు అప్నే హీ పుత్ర ప్రహ్లాద్ సే ఇత్నీ ఈర్ష్యా క్యో కర్తా థా. అతయవ్ నారద్ ముని నే కథా కహనీ ప్రారంభ కీ, జిస్ తరహ వే హిరణ్యకశిపు భగవాన్ విష్ణు కా దృఢ వైరీ బనా థా. శ్లోక నంబర్ 2 అనువాద్ పఢ్ రహే హై. क्रोध से भरकर तथा अपने होंठ काटते हुए हिरण्यकश्यपु ने क्रोध से जलती हुई आँखों से आकाश को देखा तो वह सारा आकाश धूमिल हो गया. इस प्रकार वह बोलने लगा. सदैव की भांति असुर भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं और उनके प्रति शत्रुता रखते हैं. हिरण्यकश्यपु ने भगवान विष्णु को मारने तथा उनके धाम वैकुंठ लोक को विध्वंस करने का विचार किया तो ये उसके शरीर के उद्वेग थे. ఓమజ్ఞానతి నిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. హరే కృష్ణ. తో ఆజ్ సే ఇస్ అధ్యాయ కా ప్రారంభ హో రహా హై. యే అధ్యాయ హై అసుర రాజ్ హిరణ్యకశిపు కే విషయ మే. శ్రీమద్ భాగవతం ఇస్కా ఉద్దేశ్య హై భగవత్తా యా భగవాన్ का गुणगान करना और भगवान के भक्तों का गुणगान करना. तो यहाँ पर ऐसे ही एक श्रेष्ठ भक्त का गुणगान शुरू हो रहा है. हिरण्यकश्यपु अपने पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद रहे हैं और चार कुमारों के श्राप के कारण अब वो इसको प्राप्त हुए हैं. तो आज से एक ऐसा इतिहास प्रारंभ हो रहा है जो इतिहास हमें भगवान के वात्सल्य के विषय में बतलाता है कि किस प्रकार भगवान दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं. इस विषय में दर्शाता है कि किस प्रकार अपने भक्तों के वचन को पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं. इस चीज को दर्शाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नामों को बड़ी तीव्रता से लेता है, भगवान का स्मरण तीव्रता से करता है, तो उसकी तीव्रता के अनुसार भगवान आदान प्रदान करते हैं. कंस ने बड़ी तीव्रता से भगवान का स्मरण किया था तो भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा गए उसको दर्शन देने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए. हिरण्यकश्यपु ने बड़ी तीव्रता से भगवान का स्मरण किया और ये तीव्रता इतनी थी कि भगवान ने इंतजार नहीं किया किसी माँ के गर्भ में जाने का, फिर जन्म लेने का, फिर बड़े होने का. और इस तीव्रता को देखकर खंभे को तोड़कर भगवान निकल आए, क्योंकि भगवान इतने आतुर थे उस भक्त को, उस भक्त के पास जाने के लिए जो बड़ी तीव्रता से उनका स्मरण कर रहा था. और साथ ही साथ ये इतिहास है उस महान भक्त का, प्रह्लाद महाराज का, जो ये बतलाता है कि किस प्रकार केवल भगवान के स्मरण मात्र से व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर सकता है। तो ऐसी कई चीजें इस इतिहास में हैं, जो इतिहास आज से प्रारंभ हो रहा है, कि किस प्रकार भगवान दयालु हैं। ऐसा और कौन दयालु होगा जो अपने ही शत्रु को उद्धार करने के लिए, बड़े बड़े योगी भगवान का दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन ऐसे असुरों को भी भगवान दर्शन देते हैं, स्वयं जाते हैं, खुद चलकर मथुरा गए, खुद खंभे से निकलकर हिरण्यकश्यपु के सामने आए। इसलिए बताते हैं कम्वा दयालु शरणम प्रपत्ति, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हमें शरण लेनी चाहिए। और कैसे असुर थे ये भक्त लोग, तो बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। और यहां हिरण्यकश्यपु इस दूसरे श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो उनको मारना चाहता था, विष्णु मेरा दुश्मन है। भक्त जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हिरण्यकश्यपु जप कर रहा था मरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण मरे मरे, प्रयास कर रहा था उनको मारने के लिए, किस तरह से मार सकूं। लेकिन ये भगवान की कृपा है कि भगवान अपने नाम का उच्चारण करने वाले का भाव देख लेते हैं कि कितनी तीव्रता से ये मेरा नाम ले रहा है, और कुछ नहीं सोच रहा था हिरण्यकश्यपु, केवल विष्णु को मारना है, ये विष्णु मेरा शत्रु है। और भगवान आए उसके पास, उसके सामने आए, प्रकट हुए। वाल्मीकि मुनि ने भी भगवान का नाम नहीं लिया था, उन्होंने तो मरा 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 शुरुआत किया था, क्योंकि वो मार रहे थे सबको, लेकिन फिर भी उनको भगवान ने शक्ति दी, उनको शुद्ध किया। तो ये भगवान की कृपा है, तो ये इतिहास भगवान की कृपा का इतिहास है। लेकिन इस इतिहास की शुरुआत जो आज के इन दो श्लोकों में बतलाया जा रहा है, भगवान वराह के रूप में और हिरण्याक्ष की कथा के रूप में, तो इस इतिहास की शुरुआत होती है एक ऐसी स्त्री से जो काम से प्रभावित है, एक कामुक स्त्री से इस इतिहास की शुरुआत होती है। काम, जैसे कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापम विध्यनम इह वैरिनम, सबसे बड़ा शत्रु है ये काम। और इस काम के कारण आगे चलकर कितने कष्ट व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं ये उस समय वो जान नहीं पाता, जिस समय व्यक्ति कामुक होता है, जिस समय काम उसके पर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, उसे कुछ नजर नहीं आता, उसे केवल भोग नजर आता है। और ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है, भले ही बाद में उसे पश्चाताप क्यों ना करना पड़े। इसीलिए सारे जगत में ये काम फैला हुआ है और सब लोग नरक की ओर जा रहे हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि ये तीन द्वार हैं नरक के। इसीलिए काम को, लोभ को, क्रोध को त्यागना चाहिए ताकि हम लोग नरक की ओर ना जाएं। लेकिन सब लोग काम के वशीभूत हैं, इसीलिए सब काम से पीड़ित होकर नरक की ओर जा रहे हैं। ये काम ही है जो हमें इस जगत में बांधे रखता है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि इस जगत में बने रहने का, अपने अस्तित्व को बनाए रखने का जीवात्मा का एक ही कारण है, और वो है रजोगुण, और रजोगुण से उत्पन्न ये काम, जिसके द्वारा व्यक्ति इस जगत में बंधा रहता है, कामी रहता है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग रूपों में ये काम प्रकट होता है, और विशेष करके एक स्त्री की आसक्ति के लिए व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है, अंधा हो जाता है। शंकराचार्य जी लिखते हैं कि वो व्यक्ति जो स्त्री के अंगों की ओर आकर्षित रहता है, वो ये भूल जाता है कि वो एक अंधे कुएं में गिर रहा है। उसको अपने आप को बार बार याद दिलाना चाहिए कि ये भी तो केवल एक मांस का टुकड़ा है। लेकिन फिर भी व्यक्ति कामुक रहता है। इस जगत में हम लोग देखते हैं कितने सारे इतिहास हैं, कथाएं हैं, लोग चर्चा करते हैं, जूलियस सीजर, क्लियोपात्रा, या फिर सैमसन और डिलायला, या फिर रोमियो जूलियट, लैला मजनू, ये सारी कोई प्रेम की कहानियां नहीं है जिन्हें लव स्टोरीज कहा जाता है। ये तो काम की कथाएं हैं, कामुक लोगों की कथाएं हैं, किस तरह काम के द्वारा उनका पतन हुआ इसकी कथाएं। वो मजनू जो कपड़े फाड़ कर लैला लैला चिल्ला रहा है, उसको क्या मिला और किस योनि में गया क्या पता। ऐसा ही अगर कृष्ण कृष्ण चिल्लाया होता बिना कपड़े फाड़े तो भी लाभ हो गया होता उसको, लेकिन लैला लैला चिल्लाया। हमने ऐसा भी सुना बाद में पागल खाने में गए और जिससे लैला का विवाह हुआ वो भी पागल खाने में गया, तो क्या लाभ है। यही कृष्ण का नाम लीजिए तो कितना लाभ है। अगर उसने इतना ही तीव्रता से कृष्ण का नाम, जब हिरण्यकश्यपु जैसा ये असुर, कंस जैसा असुर केवल भगवान का नाम लेकर भगवान का स्मरण करके मुक्ति पा सकता है, तो वो व्यक्ति जो लैला लैला चिल्ला रहा था सड़कों पर घूमते हुए पत्थर खाने के लिए तैयार था, अगर कृष्ण कृष्ण नाम का स्मरण किया होता, उस समय महामंत्र बोला होता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, मुक्त हो गया होता। लेकिन अभी पता नहीं किस योनि में होगा। प्रार्थना करते हैं उसके लिए कि शायद भगवान कभी तो सद्बुद्धि दें और वही तीव्रता से वो भगवान का नाम ले। तो ऐसा काम, इतना जो बड़ा इतिहास जिसके विषय में हम लोग सुनने जा रहे हैं, कई अध्याय सुखदेव गोस्वामी इस इतिहास के लिए देते हैं। केवल हिरण्यकशिपु का वर्णन करते हैं, फिर हिरण्यकशिपु कैसे राज्य करता था, प्रहलाद का वर्णन करते हैं, कैसे नरसिंह देव प्रकट हुए। तो इतना बड़ा इतिहास, ये शुरुआत हुआ जब दीति के हृदय में काम उत्पन्न हुआ। एक समय दीति ये जो दक्ष की पुत्री हैं और कश्यप मुनि से इनका विवाह हुआ है, कश्यप मुनि को दक्ष ने 13 पुत्रियां दी थी अपनी, और बाकी सारी जो 12 पुत्रियां थी उनके संतानें हो चुकी थी, दीति के कोई संतान नहीं थी। और दीति इस चीज को हृदय में लेकर बैठी थी कि मेरे कोई संतान नहीं है। बाकी सारी जो उनकी पत्नियां थी, कश्यप मुनि की कई पत्नियां थी, उनकी सबके संतान हो चुकी थी। तो ये दीति ये इतने ऐसे परिवार से हैं, इतने वैभवशाली परिवार से, इतने संपन्न परिवार से, कि आप सोचिए दीति कौन है, दक्ष की पुत्री, और दक्ष की पत्नी कौन है, मनु की पुत्री, और मनु कौन है, ब्रह्मा जी के पुत्र। अर्थात अगर इनकी वंशावली देखें तो कितने सभ्य वंश से हैं, मनु की पुत्री हैं ये दीति। लेकिन जिस समय काम व्यक्ति के ऊपर आवेश कर लेता है, उस समय वो अपने वंश को, अपनी स्थिति को, अपनी भक्ति को, अपने पति को, सबको भूल गए। उनके पति भी इतने बड़े भक्त हैं, कश्यप मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है, ये भी प्रजापति हैं। तो कश्यप मुनि जो भक्ति में लगे थे संध्या के समय, तो उस समय दीति कश्यप मुनि के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, बड़ी फ्रैंकली एकदम कहती हैं उनसे कि अपने हृदय में कुछ नहीं रखती हैं। वो कहती हैं कि ये कामदेव मेरे ऊपर आतुर हो रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप अपने पति का कर्तव्य, अपने पति के स्थिति का कर्तव्य को निभाते हुए मुझे एक संतान प्रदान करें, मैं पुत्र चाहती हूं। और ऐसे कहकर उन्होंने देखा कि उस समय कश्यप मुनि ध्यान में थे। कश्यप मुनि कोई ऐसी अवस्था में नहीं थे कि जब वो इस कार्य को कर सकें, वो भगवान का स्मरण कर रहे थे, संध्या का समय था। लेकिन दीति ने उनसे बड़ी प्रार्थना करने आरंभ की, उनको पति का कर्तव्य याद दिलाने लगी। और जब इतने पर भी कश्यप मुनि नहीं माने तो कश्यप मुनि के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगी, इतनी कामुक हो गई थी दीति उस समय, भागवतम वर्णन करता है। और उस समय जब दीति को ऐसी अवस्था में उन्होंने देखा तो कश्यप मुनि भी अपने आप को वश में नहीं रख पाए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कोई पति और पत्नी विवाह करते हैं, विवाह का संस्था में आते हैं विवाह में, तो विवाह ये केवल अनियंत्रित यौन सुख भोगने के लिए नहीं है, विवाह है कि नियमों में रहकर हम केवल कृष्ण की भक्ति करें। दो लोग एक साथ आते हैं इस कारण से नहीं कि दो शरीर मिल पाए, दो आत्माएं आती हैं एक साथ, जिससे वो अपने और अपने एक दूसरे को सहयोग करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके, ये विवाह है। और श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई ऐसे विवाह नहीं करता है तो वो अवैध संग करता है। और वो कहते हैं कि कश्यप मुनि अपनी पत्नी की इस अवैध जो इच्छा थी उसके प्रति वो समर्पित हो गए। और फिर कश्यप मुनि ने दीति से कहा कि आपने जो भी कहा है वो सही है, पति के रूप में मुझे आपको पुत्र प्रदान करना चाहिए, ये बात सही है, मेरा कर्तव्य है, लेकिन आप कुछ देर रुक जाइए, ये समय अभी ठीक नहीं है, ये समय भूत प्रेतों का समय है, ये समय शिव जी का समय है, शिव जी इस समय अपने वाहन बैल पर बैठकर चारों ओर घूमते हैं, तो ये सही समय नहीं है। इससे हम लोग सीख सकते हैं कि समाज में अगर संतान उत्पत्ति भी करनी है तो उसका एक समय होता है, शास्त्रों में समय दिया गया कि किस समय पर संतान उत्पत्ति करनी चाहिए, कौन से संस्कार करने चाहिए, तब हम अच्छी संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। कश्यप मुनि उसको बतलाते हैं कि अगर ऐसे समय में कोई संतान उत्पत्ति होती है तो वो अवांछित संतान होती है। वो कहते हैं कि इस समय सारे भूत प्रेतों का समय है, शिवजी के जितने अनुयायी हैं वो भूत प्रेत हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है वो भूत बन जाता है, ऐसा बतलाया गया है। चाहे वो भौतिक स्तर पर, इस शारीरिक स्तर पर आत्महत्या हो या आध्यात्मिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर आत्महत्या है गले में फांसी लगा लेना, जहर खा लेना, ट्रेन के नीचे आ जाना, बहुत सारे मार्ग हैं, लोगों का दिमाग बहुत चलता है, इसमें नए नए मार्ग आ रहे हैं। एक बार हमने सुना था बंबई में एक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता था सब परिवार, तो उसने एक नया तरीका निकाला, बच्चों को चॉकलेट में जहर डालकर दे दिया, तो बच्चों ने चॉकलेट खाई और बच्चे मर गए, पत्नी ने खाई बच्ची मर गए, उसके बाद खुद की भी उसने हत्या कर दी। तो इस तरह से नए नए चीज आ रहे हैं, तो लोग शारीरिक स्तर से जो आत्महत्या करते हैं वो भी भूत बन जाते हैं, जो आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं अर्थात जो आत्मा के अस्तित्व को विलीन कर देना चाहते हैं निराकार में, वो भी शंकर जी के अनुयायी हैं। शंकराचार्य के रूप में शिव जी उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो वे लोग आध्यात्मिक दृष्टि से आत्महत्या करते हैं, तो वे भी भूत के समान हैं। तो इसलिए कश्यप मुनि कहने लगे कि यह भूत प्रेतों का समय है, यह अच्छा समय नहीं है। लेकिन दीति के ऊपर काम इतना प्रभावी था कि दीति रुकना नहीं चाहती थी, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी, कुछ भी क्षण कुछ भी समय रुकना नहीं चाहती थी। और फिर कश्यप मुनि को समर्पण करना पड़ा। ये वही कश्यप मुनि हैं जो आगे चलकर भी समर्पण करेंगे और फिर स्त्री के विषय में वो बहुत बढ़िया ज्ञान भी देंगे, लेकिन फिर भी इस समय अपनी पत्नी के प्रभाव में आए। ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं कि कोई युवक युवती है, उनका जो आकर्षण होता है, इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा आकर्षण कृष्ण के प्रति होना चाहिए, वो आकर्षण जो एक युवक को युवती के प्रति होता है, ऐसा आकर्षण अगर कृष्ण के प्रति हो जाए तो जीवन सफल हो जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बहुत कड़क कठोर आकर्षण होता है। इसीलिए उनको लगता है शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचस्व श्रवणामृतम, उस समय कुछ दिखाई नहीं देता है कि जो भी बोल रहे हैं ये अमृत के समान है, मुख एकदम कमल के समान है। बाद में वो कमल मुरझा जाता है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम उस समय तो बहुत अच्छा लगता है। तो शरद पद्मोत्सव ऐसे ही उनको भी लग रहा था कि मेरी पत्नी तो सबसे सुंदर है इस जगत में। और फिर उन्होंने प्रभावी होकर दीति की इच्छा को पूर्ण किया। उस समय जब दीति ने गर्भ धारण किया, अब यहां से हम आपको बतलाना शुरू करते हैं कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का क्या बल था। जिस समय गर्भ में आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, उसी समय, क्योंकि ये जब गलत समय पर गर्भ धारण हुआ था
जैसे ही दीति ने दीति को पता चला तो उसके बाद वो गई कश्यप मुनि के पास, क्षमा याचना करने लगी, कहने लगी कि हमने शिव जी का अपराध कर दिया है, ऐसे समय में गर्भ धारण नहीं करना था, तो मैं नहीं चाहती हूं कि कुछ अनिष्ट हो जाए, तो कृपया आप बतलाइए। तो उस समय वो कहने लगे कि तुम मूर्ख हो, तुमने ऐसे समय में ये कामना की है तो जो भी तुम्हारे पुत्र होगा, तुम्हारे दो पुत्र होंगे लेकिन दोनों ये नालायक होंगे एकदम पुत्र, अर्थात इस धरती के ऊपर बोझ हो जाएंगे, वो ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा केवल इनके उत्पन्न होने से, और ऐसे पुत्रों को तुम उत्पन्न करने वाली हो, लेकिन उनकी हत्या भगवान करेंगे। तो उस समय दीति ने एक वरदान मांगा कि ब्राह्मण इनकी हत्या नहीं कर पाए, ब्राह्मणों से इनको कोई खतरा ना हो, क्योंकि दीति जानती थी कि अगर ब्राह्मण इनके ऊपर कुछ नहीं करेंगे तो वो काफी समय तक बने रहेंगे। भगवान ब्राह्मणों के ऊपर प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मण इनके ऊपर प्रसन्न होंगे तो भगवान भी इनके ऊपर प्रसन्न होंगे। तो एक दृष्टि से दीति मांग रही थी कि भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हो जाए। दीति प्रसन्न भी हुई कि स्वयं भगवान आएंगे इनकी हत्या करने के लिए, उसके हृदय में प्रसन्नता थी, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके लिए भगवान आने वाले। आज भी अगर किसी को बोला जाए कि तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए भगवान आएंगे तो उसको प्रसन्न होना चाहिए, अरे भगवान आ रहे मतलब कितना बड़ा व्यक्ति है वो। जैसे किसी घर में किसी को कहा जाए कि आपके पुत्र को कुछ उपहार देने के लिए प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, प्रेसिडेंट आने वाले हैं भारत के, तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसी तरह अदिति प्रसन्न थी कि भगवान आएंगे, लेकिन साथ ही साथ दुख भी था कि पुत्र मारे जाएंगे, तो इसलिए ऐसे वरदान मांग रही थी। और वो कह रही थी कि इनको आप भक्ति में लगा दीजिए, आपके अंदर शक्ति है। तो कश्यप मुनि कहने लगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इनमें से जो एक का पुत्र होगा, अर्थात हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, वो बड़ा भक्त बनेगा और उसके कारण सारे वंश का नाम रोशन होगा। तो इस तरह का वरदान कश्यप मुनि ने दिया। तो देखिए, जो मुनि ऋषि हुआ करते थे इनको त्रिकालज्ञ कहते थे, ये सब जानते थे पहले के समय क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। तो अभी तो हिरण्यकश्यप ही पैदा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने प्रहलाद के भी पैदा होने की कथा बतला दी कि प्रहलाद होंगे और ऐसे ऐसे स्मरण करेंगे, भगवान के बड़े भक्त बनेंगे और उनका गुणगान तीनों लोकों में होगा, ऐसा वर्णन किया कश्यप मुनि ने। तो उस समय फिर दीति को गर्भ दीति ने धारण किया। तो जैसे ही ये दोनों असुर राज, यहां पर वर्णन है असुर राज हिरण्यकश्यप, तो दोनों जैसे ही गर्भ में आए, सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी जो है वो बाधित हो गई, सूर्य अपनी परिक्रमा नहीं कर पाए, चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं बरसा पाए, सारे ब्रह्मांड में अंधकार हो गया केवल गर्भ में आने से। जब भगवान गर्भ में आते हैं, जब भगवान देवकी के गर्भ में आए थे तो सारे ब्रह्मांड में आनंद फैल गया था, यहां पर ये दोनों आए तो सारे ब्रह्मांड में अंधकार हो गया, आंधी चलने लग गई, तूफान आ गया, तो सारे देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और पूछने लगे कि ब्रह्मा जी इस जगत में क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं, इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो देवता तुरंत उनके पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी आप बताइए ये सब क्या गड़बड़ है। तो ब्रह्मा जी उनको कहने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे सारे के सारे पुत्र नालायक निकल रहे हैं, ये मेरे चार नालायक पुत्रों का काम है। तो देवताओं को समझ में नहीं आया कौन से चार पुत्रों के वर्णन कर रहे हैं। तो कहने लगे कि मेरे चार पुत्र सबसे पहले मैंने उत्पन्न किए थे और उनसे कहा था कि भाई आप मेरा काम आगे बढ़ाओ, जो पिता का काम होता है वो पुत्र आगे बढ़ाता है, ऐसा पिता आकांक्षा करता है। कोई व्यापारी होता है वो सोचता है मेरे पुत्र अब इस व्यापार को चलाने चाहिए। कुछ दिन पहले हम एक व्यापारी से मिले थे तो कह रहे थे मैंने अब बहुत व्यापार कर लिया, अब इनको जो करना है ये मेरे पुत्र करेंगे। तो हर एक की पिता की इच्छा होती है। तो ब्रह्मा जी का भी ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि मेरे पुत्र मेरे व्यापार को मेरे कार्य को आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा प्रजनन करो, लेकिन बड़े नालायक निकले। कहने लगे प्रजनन तो छोड़ दीजिए, हम बड़े ही नहीं होंगे, हम ऐसे ही ठीक हैं जिस अवस्था में हैं और ऐसे ही रहे, तो कम से कम ब्रह्मांड में घूमते तो भी ठीक था। घूमते घूमते वो वैकुंठ में चले गए और वहां जाकर भी उत्पात मचा दिया, वैकुंठ को भी नहीं छोड़ा। और वहां जाकर उन्होंने जो भगवान के द्वारपाल हैं, देखिए कितने नालायक हैं, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो भगवान के द्वारपालों को जाकर उन्होंने श्राप दे दिया जय और विजय को, और उनकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, उन्होंने केवल उन्हें रोका था कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो इसके लिए उन्हें श्राप दे दिया। और अब वो दोनों अभी 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 आध्यात्मिक जगत से गिरे हैं और दीति के गर्भ में गए हैं कश्यप मुनि के द्वारा। तो ये दीति का, उन्होंने दीति का गर्भ स्वीकार किया है, और इन दो द्वारपालों के आध्यात्मिक जगत से गिरने के कारण ये सारा उत्पात मचा हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इनको मारने के लिए भगवान स्वयं आएंगे, इनका वध करेंगे, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर जाइए और अपने अपने कार्य कीजिए। तो सारे देवता कहने लगे, हम कार्य कैसे करें, चारों ओर अंधकार है, कुछ दिखा ही नहीं दे रहा था। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप थोड़ी देर शांत रहिए। तो उसके बाद फिर ऐसा समय बीतता गया और फिर समय आया इनके जन्म का। तो आप सोचिए, जो असुर केवल गर्भ में आने से इतना उत्पात जिन्होंने मचा दिया था, जन्म के समय क्या हुआ होगा। भागवतम में बड़ा सुंदर वर्णन है। भागवतम में बतलाया जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो ये लोग प्रकट हुए कहना चाहिए, तो दोनों का जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ तो सारे ब्रह्मांड में पूरा जितना पहले से अंधकार था और उत्पात मच गया। ऐसा लग गया कि सूर्य ग्रहण हो गया है, चंद्र, सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ, दोनों का ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, कुछ भी नहीं दिख रहा था, चारों ओर आंधियां चल रही हैं, और यहां पर पृथ्वी पर भूकंप आ गया, पृथ्वी फट गई, सारे जो समुद्र थे उसमें वो उबलने लगे, ऐसे पूरे चारों ओर सारे बुरे बुरे कार्य दिखाई, बुरे बुरे लक्षण दिखने लगे। जंगलों में जो सियार होते हैं वो रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, और ऐसा बतलाया जाता है कि उस समय उनके मुख से अग्नि निकलने लगी, और जो वर्षा हो रही थी वर्षा से जल नहीं आ रहा था, पस गिर रहा था, धरती से अग्नि निकल रही थी। इतना वर्णन भागवतम में किया गया है कि कैसा वातावरण था उस समय, जो दर्शा रहा था कि कितने महान लोग प्रकट हुए हैं। फिर उस समय अचानक इनके शरीर बढ़ने लगे, और शरीर बढ़ते बढ़ते एकदम विशाल शरीर हो गए, इनके जो मुकुट थे वो आकाश को छू रहे थे, और इनका जो उदर था इससे सूर्य बाधित हो गया, सूर्य के सामने खड़े हो गए, अर्थात इनका इतना विशाल शरीर था कि सूर्य बेचारा अपनी किरणें ही नहीं फैला पा रहा था। तो इस तरह का, और जब ये चलते थे तो सारी धरती हिलती थी केवल चलने से, इतना उनका विशाल रूप था। और जब ऐसे लक्षणों से प्रकट हुए हैं तो कोई महात्मा तो होंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इतने लक्षण वाले प्रकट हुए हैं और प्रकट होते ही हाथ में जपमाला लेकर भगवान के नाम का जप करेंगे। तो इन्होंने प्रकट होते ही सारे ब्रह्मांड में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, सारे देवी देवता भाग गए इधर उधर, हिरण्याक्ष मुख्य करके अपने हाथ में गदा लेकर सारे ब्रह्मांड में घूमने लगा। इंद्र के पास गया, देखा तो इंद्र तो पहले ही देखकर ही भाग गए, क्योंकि इंद्र जानते थे इनसे तो युद्ध कर ही नहीं सकते हैं, ब्रह्मा जी ने पहले ही चेतावनी दी थी, बंबई की भाषा में कहते पंगा नहीं लेना, तो उन्होंने पहले ही कहा था पंगा मत लेना इनसे, तो इंद्र पहले से ही भाग गए थे। तो इंद्र नहीं, कोई देवता नहीं वहां पर, और फिर सारे विजय करके फिर पृथ्वी पर आ गए। अब पृथ्वी पर भी कोई लड़ने के लिए नहीं इनसे, तो सोचने लगे क्या करें, समुद्र दिखाई दिया हिरण्याक्ष जी को, तो हिरण्याक्ष समुद्र में गए और काफी वर्षों तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहे, समुद्र को खाली करते रहे, सारे जितने समुद्र के प्राणी थे विचलित हो गए। उसके बाद समुद्र में नीचे गए वरुण देवता के नगरी में, और वरुण देवता को वो पुकारने लगे, ललकारने लगे, और उसके पहले अपनी शक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने पृथ्वी को भी नीचे खींच लिया, गर्भोदक सागर में ले गए रसातल में, और ऐसे पृथ्वी को उन्होंने उस समय डाल दिया। तो ऐसा उत्पात मचा हुआ, पृथ्वी चली गई है गर्भोदक सागर में, अब मनुष्य कहां पर रहेंगे, मनुष्य क्रिया कहां करेंगे। और ऐसे समय में ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे सृष्टि की रचना करने के लिए, अपने ध्यान में लगे हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि यहां क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के विषय में सोच रहे हैं, और सोचते सोचते उनके शरीर से मनु और शतरूपा इन दो जीवों को प्रकट करते हैं। वो ऐसे भागवतम में वर्णन है, कि दो जीव प्रकट हुए ब्रह्मा जी के शरीर से, एक थे मनु और दूसरी उनकी पत्नी शत्रुपा। तो फिर उन्होंने उनसे कहा कि अब आप सब करिए, ये पहले की कथा है, उसके बाद दीती आ गई थी। तो ब्रह्मा जी उस समय कर रहे थे, मनु ने सब रचना कर दी, मनु के पुत्र हुए, 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। फिर मनु ने अपनी पुत्रियों को अलग अलग ऋषियों को दिया, फिर ऋषियों के देने के बाद उनसे फिर दीती आई, और फिर दीती के आने के बाद ये कथा हुई। तो जब इतना सब चल रहा था, उसके बाद मनु ब्रह्मा जी के पास गए और मनु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। वहां पर ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं कि ये एक बेटे का कर्तव्य है। ब्रह्मा जी को हमेशा एक ही बात ध्यान रहती थी, मेरे बेटों ने मेरी बात नहीं मानी है। तो वो मनु से कहने लगे कि तुम बेटे का कर्तव्य पूरा कर रहे हो, ये एक पुत्र का कर्तव्य है कि कैसे पिता की सेवा करनी चाहिए। तो उस समय उनसे कहते हैं कि तुम जाकर प्रजनन करो। तो उन्होंने कहा मैं प्रजनन तो करूंगा, वो ठीक है, लेकिन पृथ्वी कहां है? प्रजनन करके मैं जीवों को, मनुष्यों को, क्योंकि वो मनु है, मनु से मनुष्य आते हैं, तो मनुष्यों को कहां पर रखूंगा? उनकी कर्म भूमि पृथ्वी वो तो चली गई है नीचे रसातल में, तो मैं कैसे इन जीवों को प्रकट करूं? आप मदद कीजिए मेरी, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये बात भी सही है। फिर उन्हें ध्यान आया कि मैं तो इतना मग्न हो गया था सृष्टि की रचना में कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर नीचे चला गया। तो फिर उन्होंने ध्यान करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बड़ा विचार करने लगे, सोचने लगे कि कैसे इस पृथ्वी को उठाया जाएगा। और ऐसे ही वो विचार कर रहे थे कि करते करते अचानक उनके नथुनों से एक छोटा सा शूकर रूप बाहर आया और आकर अचानक आकाश में चला गया और उसका विशाल शरीर हो गया। तो ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए, सारे लोग विस्मित हो गए कि ये कौन है। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये अभी अभी इतना छोटा सा था, नथुनों से मेरे नाक के छिद्रों से बाहर आया है और ये अचानक इतना विशाल रूप ले लिया है इसने, तो ये और कोई नहीं स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। और उस समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान बड़ी जोर से उन्होंने गर्जना की। ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान ने गर्जना की तो सारे जो अन्य लोग थे, सत्य लोग, जन लोग, तप लोग, महर लोग, जहां पर लोग अपने ध्यान में लगे थे, अचानक उनको ये सब गर्जना सुनाई दी, लेकिन उनके मन में प्रसन्नता हो गई ये गर्जना को सुनकर, और तुरंत वे लोग भगवान के प्रति सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे, मंत्रों का उच्चारण करने लगे, जिसको सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और फिर अपने उस विशाल रूप के द्वारा वो नीचे सागर की ओर जाने लगे। लेकिन उसके पहले उन्होंने जब अपने शरीर को जोर से झाड़ा, आपने सुअरों को देखा है, सुअर होते हैं या अन्य प्राणी होते हैं, वो जब शरीर में कुछ लग जाता है जल वगैरह तो ऐसे जोर जोर से झाड़ देते हैं। तो भगवान भी एक शूकर रूप में आए थे तो उन्होंने उसको अपने शरीर को जोर से झाड़ा। तो जैसे ही झाड़ा, जो उनका जल था वो जब अन्य जीवों पर गिरा, अन्य लोगों के, कई लोगों के जीवों पर गिरा, तो तप लोक के प्राणी वर्णन करते हैं कि हमारी जो तपस्या थी इससे हम इतना शुद्ध नहीं हुए जितना शुद्ध केवल भगवान के ये जल के पड़ने से हो गए। इसलिए जब भगवान को जल अर्पण किया जाता है तो हम लोग सबके ऊपर डालते हैं ताकि भले हमारी तपस्या ठीक ना हो, हमारी साधना ठीक ना हो, भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाती है। तो इस तरह से वो बड़े फिर से उन्होंने गर्जना की और फिर वो जल में प्रवेश कर गए। और कैसे जल में प्रवेश किया? जब समुद्र में उन्होंने प्रवेश किया जोर से, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जल को, समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, इतना उनका विशाल शरीर था और इतना वेग था। और जैसे ही बांटा, 2 लहरें एक जैसे ऐसे ऊपर आई मानो दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हों भगवान से कि कृपया हमें 2 भागों में न बांटिए। और फिर भगवान नीचे की ओर चले गए और वहां से उन्होंने पृथ्वी को अपने सींग पर उठा लिया और उसके बाद वो आराम से ऊपर की ओर आने लगे। उस समय हिरण्याक्ष वरुण देव के पास बैठे थे और उनसे कह रहे थे, बड़ी प्रार्थना कर रहे थे। भागवतम वर्णन करता है कि इसको इतना अहंकार था अपने अंदर कि वो जाकर युद्ध के लिए ललकारना चाहता था वरुण देव को, लेकिन उसने ललकारा नहीं, गया और वरुण देव के पांव पकड़ लिए, उनसे मांगने लगा, भीख मांगने लगा, हिरण्याक्ष, और उनसे भीख मांग रहा है, मुझे युद्ध चाहिए, मुझे युद्ध चाहिए, कृपया मुझसे युद्ध करो। अर्थात वरुण देव का मजाक उड़ा रहा, सीधा जाकर यह नहीं किया उसने, चेतावनी नहीं दी, ललकारा नहीं, उनका मजाक उड़ा रहा है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे युद्ध चाहिए, युद्ध चाहिए, युद्ध कीजिए मुझसे, आप तो समर्थ हैं, आप तो भगवान हैं, ऐसे वर्णन करने लगा उनका गुणगान। तो वरुण देव समझ गए, तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत घमंड है अपनी शक्ति का, लेकिन आपसे युद्ध करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, आपसे युद्ध करने के लिए वहां पर समुद्र में है, आप जाइए, भगवान विष्णु ही केवल आपसे युद्ध कर सकते हैं, और मैं देख रहा हूं कि कुछ ही समय बाद आपके शरीर के आसपास कुत्ते घूमने वाले हैं, अर्थात आपकी मृत्यु होने वाली है, तो इसलिए आपको अगर युद्ध ही करना है तो आप जाइए विष्णु से युद्ध करिए, भगवान से युद्ध करिए। तो उस समय हिरण्याक्ष ने जब यह सुना कि अरे मुझसे युद्ध करने वाला कोई है, तो तुरंत वो बाहर आ गए जल में, और उन्होंने देखा कि जिस पृथ्वी को उसने नीचे गिरा दिया था, वरहा देव अपने सिंह पर रखे हुए ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत उनको युद्ध के लिए ललकारा, उन्होंने कहा कि अरे कैसा रूप लिया है, पहले तो मजाक किया कि कह रहे हैं लोग कि तुम विष्णु हो, तो चलो आओ मेरे से युद्ध करो, कैसा आपने घृणित रूप ले लिया है। वैसे भगवान का रूप कभी भी घृणित नहीं होता है, भगवान चाहे शुकर के रूप में आए, चाहे नरसिंह के रूप में आए, चाहे मत्स्य के रूप में आए, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य रहता है, इसीलिए भगवान बताते हैं जन्म कर्म क्षमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि अगर कोई व्यक्ति इस चीज को समझ जाए तो उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, लेकिन असुर इस बात को नहीं समझते, वो तो भगवान को मारना चाहते हैं, भगवान की हत्या करना चाहते हैं, या खुद भगवान बनना चाहते हैं। तो हिरण्याक्ष भी ऐसे ही थे, वो सोच रहे थे कि मैं इनकी हत्या कर दूंगा, तो फिर वो पुकारने लगे भगवान को, लेकिन भगवान ने ध्यान नहीं दिया, भगवान पृथ्वी को ऊपर ले जा रहे थे, क्योंकि भगवान देख रहे थे कि पृथ्वी बहुत डरी हुई थी, पृथ्वी कांप रही थी क्योंकि हिरण्याक्ष के भय से। तो भगवान अपने ऊपर ऊपर चले जा रहे थे, और पीछे पीछे ये उनको चेतावनी दे रहा, उनको ललकार रहा है कि कैसे व्यक्ति हो, युद्ध की ललकार सुनकर भी जा रहे हो, तुम्हें शर्म भी नहीं है, इतना भी नियम नहीं पता है कि जब कोई ललकारता है तो उससे युद्ध करना चाहिए, आओ मैं तुमसे युद्ध करता हूं और अभी इसी क्षण तुम्हारी हत्या करूंगा, फिर देखूंगा कि वो देवता, वो सारे ऋषि मुनि जो बहुत तुम्हारी तपस्या करते हैं, बहुत तुम्हारी पूजा करते हैं, वो लोग कैसे जीवित रहते हैं। अगर पेड़ की जड़ को ही उखाड़ दिया जाए तो पेड़ रह नहीं सकता, अर्थात इतना बड़ा असुर भी ये जानता था कि सारे चीजों के मूल भगवान विष्णु है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। आज तो आज के असुर उनसे भी बड़े असुर हैं, वो ये भी नहीं जानते हैं, मानते ही नहीं है, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, हम ही ईश्वर हैं, हम ही भोगी हैं, भगवान क्यों भोग करे, हमें भगवान ने बनाया है भोग करने के लिए, तो हम क्यों नहीं भोग करें, ईश्वरोहम अहम भोगी। तो इस तरह से पुकारने लगा, लेकिन भगवान ने ध्यान नहीं दिया, भगवान चलते रहे। फिर भगवान सतह तक आ गए और उन्होंने पृथ्वी को सतह पर रख दिया, अपनी शक्ति प्रदान की ताकि वो तैर सके आराम से, और फिर भगवान हिरण्याक्ष की ओर मुड़े और फिर हिरण्याक्ष को कहने लगे कि तुम्हें बहुत घमंड है अपने बल पर, तुम सोचते हो कि सारी पृथ्वी में, सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, और ऐसी बातें जो तुम कह रहे थे वो मैंने सब स्वीकार की, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, तो अब आओ मैं अब तुमसे युद्ध करता हूं। तो उस समय दोनों ने हाथ में गदा ली, भगवान के हाथ में भी गदा और हिरण्याक्ष के हाथ में भी गदा, और गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। कभी हिरण्याक्ष वार करता, कभी भगवान करते, ऐसे ही चल रहा था युद्ध, बड़ा आनंद आ रहा था भगवान को, क्योंकि जब हिरण्याक्ष गदा मारा करता था तो भगवान को लगता था किसी ने ऐसे फूल फेंक दिया है भगवान की ओर, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते थे, ये वीर रस का आस्वादन कर रहे थे भगवान, इसीलिए तो अपने पार्षदों को भेजा था नीचे यही कार्य के लिए। तो युद्ध होने लगा, काफी समय तक युद्ध चला, कभी भगवान उसको पकड़ते कभी छोड़ देते, ऐसे खिलवाड़ चल रहा था। तो ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, सभी देवता आ गए देखने के लिए, और देवता आप जानते हैं क्योंकि एकदम शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्रित भक्त हैं, तो थोड़ा उनके हृदय में संशय होने लगा कि अगर कहीं भगवान ने इसको छोड़ दिया दया करके इसके ऊपर तो फिर क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने आगे जाकर प्रार्थना की भगवान से कि हे भगवान, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, हम जानते हैं कि आप इसका वध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सब में चिंता है, और ये समय भी अभी असुरों का समय शुरू होने वाला है, इस समय में उनकी शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए अब आप खिलवाड़ मत कीजिए, अब आप इसका वध कर दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने अपनी गदा उठाई और जोर से हिरण्याक्ष की ओर मारा, लेकिन हिरण्याक्ष बच गया और वो गदा नीचे की ओर चली गई। तो सारे देवता हैरान हो गए, अरे अरे भगवान ने गदा मारा, भगवान की गदा भी गई नीचे, अब क्या होगा। वो देख रहे हैं भगवान की गदा नीचे जा रही है, और भागवतम वर्णन करता है कि वो दृश्य भी बड़ा सुंदर था, क्योंकि भगवान की दिव्य गदा बड़े आसानी से तैरती हुई समुद्र में नीचे जा रही है। भगवान की सब चीजें दिव्य हैं, लेकिन सारे देवता घबरा गए, अरे अब क्या होगा, भगवान तो मारने वाले थे, गदा भी गई भगवान की। लेकिन हिरण्याक्ष एकदम क्षत्रिय था, हिरण्याक्ष ने वार नहीं किया भगवान पर, उन्होंने कहा अपनी गदा उठाओ और मेरे से युद्ध करो। देखिए उनके भी कुछ नियम हुआ करते थे, अभी तो कोई नियम नहीं है, सारे असुर ऐसे ही हैं। लेकिन भगवान ने गदा नहीं उठाई, तो उस समय फिर हिरण्याक्ष हाथों से मारने के लिए आया भगवान के, गदा लेकर आया, भगवान को दिया गदा, थोड़ा सा युद्ध हुआ, फिर से भगवान ने गदा युद्ध में रुचि नहीं दिखाई, अब भगवान कुछ और करना चाहते थे, बहुत हो गया गदा युद्ध, भगवान ने सोचा, तो गदा से युद्ध नहीं हो रहा था। तो उस समय भगवान ने अपना चक्र निकाला, सुदर्शन चक्र। तो जैसे ही सुदर्शन चक्र निकाला, तो उस समय हिरण्याक्ष सारे जितने अस्त्र थे उनको फेंकने लगा भगवान की ओर, उसने अपनी गदा फेंकी, भगवान ने चक्र से काट दी। फिर एक उसने त्रिशूल लिया, त्रिशूल फेंका, वो भी भगवान ने चक्र से काट दिया। अब उसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, तो जैसे उसने नियम का पालन किया था, भगवान ने भी नियम का पालन किया, भगवान ने उसके ऊपर चक्र नहीं चलाया। उसके बाद वो आकर भगवान को अपने हाथों से मारने लगा, अपनी मुट्ठी का उसने जो घुसा मारते हैं ऐसे भगवान को मारने लगा, भगवान की छाती पर उसने प्रहार किया जहां श्रीवत्स का चिन्ह है, लेकिन भगवान को कुछ नहीं लगा, भगवान को लगा कि इसने मुझे फूल अर्पण किए, भगवान और प्रसन्न हो गए। और देवता इसीलिए चिंतित थे कि भगवान कहीं इसकी सेवा को स्वीकार करके इसको माफ ना कर दें क्योंकि भगवान ऐसे कर लेते हैं कि वो तो असुर है, लेकिन भगवान उसको सेवा मानकर उसका उद्धार कर दें और छोड़ दें। तो देवता बड़े चिंतित थे, बार बार कह रहे थे भगवान को, पीछे से बोल रहे थे अब करो मारो मारो, बहुत देर हो गई। तो फिर भगवान ने कुछ नहीं किया, तो वो हाथों से प्रहार कर रहा है, तो अब भगवान चक्र कैसे चला सकते हैं, उसने नियम का पालन किया है। तो फिर भगवान ने कहा, सोचा कि अब इस लीला को समाप्त करना चाहिए, काफी समय हो गया, मेरे जो भक्त हैं वो खड़े चिंतित हो रहे हैं। तो भगवान ने अपना जो हाथ लिया और एक तमाचा उसके कान के नीचे लगाया, ऐसे बोलते हैं ना कि कान के नीचे वजन, भागवतम में ऐसा वर्णन है, शायद भागवतम से ही लिया है, भागवतम में बड़े अच्छे से कहा है कि एट द रूट ऑफ द ईयर, कान के नीचे मूल पर, यहां पर भगवान, ये देखो भगवान से सब कुछ परंपरा से आता है हम लोग कई बार बंबई में थे तब सुनते थे, यहां पर तो कोई नहीं कहता है कि कान के नीचे बजा दूंगा, ऐसा होता है। तो भगवान ने कान के नीचे बजा दिया उसके, और जब उन्होंने मारा तो केवल एक थप्पड़ मारने से, देखिए भगवान की शक्ति कितनी है, ऐसा नहीं था कि जब गदा से युद्ध कर रहे थे तो मार नहीं सकते थे, चक्र से मार नहीं सकते थे, अन्य अस्त्रों से नहीं मार सकते थे, भगवान ने दिखाया मैं केवल थप्पड़ से ही मार सकता हूं। एक थप्पड़ मारा, वो गोल 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 घूमने लगा और फिर नीचे जाकर गिर पड़ा, खून की उल्टी करने लगा, आंखें बाहर आ गईं, सारा जो उसका बल था वो समाप्त हो गया, केवल भगवान ने एक चमात लगाई थोड़ी सी। तो उस समय ब्रह्मा जी वगैरह सारे देवता जाकर सबसे पहले हिरण्याक्ष के शरीर को देख रहे थे, भगवान को नहीं देखा उन्होंने, हाँ ऐसा वर्णन है भागवत में कि पहले जाके हिरण्याक्ष को मर गया कि नहीं मर गया नहीं तो फिर से उठ जाएगा तो तकलीफ होगी। तो फिर उन्होंने जाके हिरण्याक्ष के शरीर को देखा और देखा बहुत अच्छा है, आंखें बाहर आ गई हैं, खून की उल्टी कर रहा है, अभी उठेगा नहीं। तो इस तरह से फिर भगवान ने देखा कि जब सब कुछ ठीक ठाक है, हिरण्याक्ष का वध हो गया है, तो फिर भगवान अपने धाम को वापस चले गए। जिस रूप में, वैसे वराह के रूप में भगवान आए थे, हिरण्याक्ष का वध किया। तो ये पहले दो श्लोकों में यही बता रहे हैं नारद मुनि कि इस तरह से भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला। तो उसके बाद हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये आत्मज्ञानी था, आत्म साक्षात्कारी था, आत्मा का ज्ञान देने वाला है। खुद तो विचलित हुआ यहां पर, लेकिन हिरण्याक्ष के पुत्रों को कहेगा कि अरे अरे चिंता मत करो, आत्मा तो शरीर बदलती रहती है।